नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की हमारी वसीयत और विरासत, इसके एक अहम अध्याय पर बात करेंगे।
जी,
अध्याय का नाम है गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग पर परीक्षा। तो आज कोशिश रहेगी कि पूज्य गुरुदेव की जो पहली हिमालय यात्रा थी उसके अनुभव,
हाँ, उसके जो गहरे सबक थे उन्हें समझें।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो यात्रा ऐसी थी जहाँ हर कदम पर, जैसे कि अध्याय का नाम ही है, पग पग पर परीक्षा थी।
जी।
और ये जो बुलावा था ना, ये अपने आप में ही एक एक कहानी जैसा है, जैसे वो मत्स्यावतार की कथा है ना,
हाँ, ब्रह्मा जी के कमंडल वाली मछली की।
वही वही, जैसे वो छोटी सी मछली विराट हो गई, वैसे ही ये हिमालय यात्रा पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बनी।
अच्छा,
और ये समय भी खास था, ये उनकी गुरु दीक्षा और वो जो 24 वर्ष की उनकी गायत्री पुरुषचरण साधना थी ना,
जी जी
उसके ठीक बाद की ये घटना है। और कमाल की बात ये भी है कि ये बुलावा बिल्कुल अचानक आया है ना, मतलब हिमालय से संदेश मिला और बस।
हाँ, और गुरुदेव के मन में एक एक द्वंद भी चला। एक तरफ तो घर परिवार, आराम, सुरक्षा, और दूसरी तरफ वो अध्यात्म का कठिन रास्ता, चुनौती।
लेकिन उन्होंने फैसला बहुत जल्दी लिया, सिर्फ 24 घंटे में। ये तो कमाल का संकल्प है।
बिल्कुल, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था।
अच्छा,
ये असल में उनके गुरु द्वारा बहुत सोच समझकर बनाई गई परीक्षाओं की एक पूरी श्रृंखला थी।
मतलब गुरु परखना चाहते थे।
हाँ, परखना चाहते थे कि मुश्किल हालात से जूझने की उनकी जो भीतरी शक्ति है, उनका मनोबल है, वो कितना मजबूत है, कितना पक्का है।
तो फिर ये परीक्षाएं असल में थीं कैसी, मतलब क्या क्या मुश्किलें आई रास्ते में?
मुश्किलें तो बहुत थीं। देखिए, पहली बात तो ये कि पूरी यात्रा पैदल थी। फिर सामान अनुभव था नहीं, तो जरूरत से ज्यादा ले लिया।
अच्छा हाँ, ऐसा हो जाता है
जी, तो वो रास्ते में फिर दूसरों को बांटना पड़ा। और फिर मौसम, कड़ाके की सर्दी, ऊपर से बिल्कुल अकेलापन, रास्ते एकदम सुनसान,
और रहने ठहरने का भी कोई इंतजाम नहीं।
कोई ठीक इंतजाम नहीं। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी जंगली जानवरों से सामना।
हाँ मैंने पढ़ा, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि दिन रात में 10-20 बार, कभी सांप अजगर तो कभी तेंदुए रीछ हाथी।
जी हाँ, उन्होंने इसे कहा है साक्षात मृत्यु से मुठभेड़। सोचिए जरा, बार बार मौत से सामना।
सच में ये तो सोचकर ही डर लगता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति तो शायद हिम्मत ही हार जाता।
बिल्कुल, या रास्ता बदल लेता। लेकिन यहीं पर पूज्य गुरुदेव की जो साधना थी, उनकी जो सोच थी, वो काम आई।
क्या किया उन्होंने, मतलब कैसे सामना किया?
उन्होंने बाहर की मुश्किलों को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने अंदर की स्थिति को, अपनी सोच को साधा।
ये बात बहुत गहरी है, जैसे वो अकेलापन, उससे कैसे निपटे?
उन्होंने वो जो भाव है ना, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती ही मेरा परिवार है,
हाँ हाँ,
उस भाव को जगाया। जंगल के हर पेड़ पौधे, जीव जंतु को अपना समझा। इससे धीरे धीरे अंदर एक अभय, मतलब निर्भयता का भाव जागा। वो डर और सूनापन भी फिर अच्छा लगने लगा।
और वो कड़ाके की ठंड, उसका क्या?
उसके लिए कुछ तो व्यावहारिक उपाय किए, जैसे गुफाओं में रुकना, या कुछ खास वनस्पतियां होती हैं उनका इस्तेमाल, भोजपत्र की चाय पीना, या फिर उकड़ू बैठ जाना ठंड कम करने के लिए।
अच्छा,
लेकिन सबसे बढ़कर फिर वही बात, मन को साधना, तितिक्षा का अभ्यास किया, मतलब बिना परेशान हुए मुश्किलों को सहने की क्षमता, ठंड को सहना सीखा, उस पर जैसे विजय पाई।
और वो हिंसक जानवर, उनसे कैसे, क्या दोस्ती कर ली?
हाँ हाँ, दोस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, डर की जगह मन में मैत्री और निर्भयता का भाव पैदा किया। ये समझा कि जानवर यूं ही हमला नहीं करते जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए या उन्हें खतरा ना लगे, तो वो उनके रास्ते से हट जाते, उन्हें जाने देते। उन्होंने सर्कस के ट्रेनर, या वो जो बॉन्ड फी पुस्तक है ना, जिसमें एक नारी शेर के बच्चों को पालती है,
हाँ हाँ पता है,
उनसे भी प्रेरणा ली। और धीरे धीरे ये विश्वास पक्का हो गया कि अगर मन में डर ना हो, प्रेम हो, तो हिंसक जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते।
ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब चाबी बाहर के हालात बदलने में नहीं, अपने मन को मजबूत करने में है।
बिल्कुल, प्रतिकूलताओं को ही अनुकूलता में ढाल लिया उन्होंने।
और इसी हिम्मत और मन की ताकत से वो फिर गंगोत्री, गोमुख, तपोवन जैसे मुश्किल पड़ाव पार करते हुए आखिर नंदनवन पहुंचे।
जी, जहां उनके गुरुदेव उनका इंतजार कर रहे थे। उनसे मिलने का जो आनंद था वो तो शायद शब्दों में बताना भी मुश्किल है।
और वहाँ गुरु ने फिर बताया कि ये सब एक परीक्षा थी।
हाँ, गुरु ने स्पष्ट किया कि इस पूरी यात्रा में मुख्य रूप से तीन कसौटियां थीं। पहली, बिना साथी के अकेले काम चलाना सीखना। दूसरी, मौसम की मार यानी ऋतुओं का प्रकोप सहने की तितिक्षा।
और तीसरी
उन हिंस्र पशुओं के बीच भी शांत रहना, अविचलित रहना। और पूज्य गुरुदेव इन तीनों में ही खरे उतरे।
गुरु का संदेश क्या था आखिर में?
गुरुदेव ने कहा कि देखो, आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए प्रचंड मनोबल चाहिए। मुश्किलों को दबोचकर अपने बस में करना सीखना होगा। शेर बाघ क्या, मौत से भी न डरना, ये ऋषि जैसी आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे जीवन का बड़ा हिस्सा तुम्हें ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में बिताना होगा।
गुरु ने कुछ उपहार भी तो दिए थे ना, ब्रह्म कमल और?
हाँ, ब्रह्म कमल जिसकी सुगंध गहरी शांति देती है, और देवकंद जो कई दिन तक भूख मिटा सकता है। ये सिर्फ चीजें नहीं थी, ये प्रतीक थे गुरु की कृपा के, आध्यात्मिक पोषण के।
सही कहा।
तो कुल मिलाकर इस पूरे अनुभव का सार यही निकलता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ने के लिए अंदर की शक्ति मतलब मनोबल, तितिक्षा यानी सहनशीलता, और अभय यानी निर्भयता, इनको जगाना और बढ़ाना सबसे अहम है।
ये यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया थी, खुद को बदलने की यात्रा थी।
तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए हम एक विचार छोड़ सकते हैं?
जी जरूर।
पूज्य गुरुदेव ने बाहरी मुश्किलों का सामना करने के लिए अपनी भीतरी शक्ति और अपनी सोच पर काम किया। आज के इस भागदौड़ भरी चुनौतियों वाली दुनिया में हम अपने जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, उनसे जूझने के लिए अपनी अंदरूनी मजबूती को कैसे जगा सकते हैं, उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।